नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आकर्षता सिंह। पीएम ई ड्राइव योजना के तहत दिल्ली में 2,800 इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली परिवहन निगम के बेड़े में शामिल होंगी। दिल्ली सरकार 14 जून को यमुना तट स्वच्छता अभियान का आयोजन करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता अधिवक्ता पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 12वीं कक्षा के पुनर्मूल्यांकन आवेदन का आज आखिरी दिन, मध्यरात्रि में बंद हो जाएगा पोर्टल। दिल्ली में सार्वजनिक यातायात सेवाओं के विस्तार के लिए दिल्ली सरकार महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। इसके तहत भारत सरकार की पीएम ई ड्राइव स्कीम, प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इनोवेटिव व्हीकल इन्हेंसमेंट के अंतर्गत पूरी तरह से इलेक्ट्रिक 2,800 एयर कंडीशन्ड लो फ्लोर बस दिल्ली परिवहन निगम डीटीसी के बेड़े में शामिल करने की योजना बनाई गई है।
इस अभियान में 1,409 मीटर और 1,412 मीटर वाली इलेक्ट्रिक बसें शामिल हैं। इस पहल से दिल्ली में सार्वजनिक यातायात तक पहुंच बेहतर होगी और लास्ट माइल कनेक्टिविटी को भी मजबूती मिलेगी। ये पहल दिल्ली सरकार के उस दृष्टिकोण का हिस्सा है जिसका लक्ष्य पूरे शहर में सार्वजनिक यातायात के लिए डीटीसी की बसों की संख्या बढ़ाना और जीरो एमिशन आधारित यातायात संसाधनों की हिस्सेदारी को भी बढ़ावा देना है। दिल्ली में लगभग 400 इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं, जो इसे देश के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक बस फ्लीट में से एक बनाती है। दिल्ली सरकार का लक्ष्य इस साल के अंत तक इस संख्या को बढ़ाकर लगभग 7,500 इलेक्ट्रिक बसों तक पहुंचाना है। दिल्ली सरकार के इस पहल से गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को कम करने, वायु की गुणवत्ता को बेहतर बनाने और लोगों को साफ, सुरक्षित और भरोसेमंद सार्वजनिक यातायात प्रणाली उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण मदद मिलेगी। नीतिका गुप्ता की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए प्रशांत कुमार।
दिल्ली सरकार 14 जून को यमुना तट स्वच्छता अभियान का आयोजन करेगी। इस अभियान के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मौजूद रहेंगी। मुख्यमंत्री अभियान में नागरिकों के साथ मिलकर स्वच्छ और स्वस्थ यमुना के संकल्प को मजबूत करेंगी। श्रीमती गुप्ता ने कहा है कि यमुना केवल नदी नहीं बल्कि दिल्ली की सांस्कृतिक, धार्मिक और पर्यावरणीय धरोहर है। यमुना के संरक्षण का दायित्व सरकार के साथ साथ प्रत्येक नागरिक की भी जिम्मेदारी है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
14 जून को आयोजित होने वाले यमुना तट स्वच्छता अभियान 2026 के अंतर्गत यमुना रिवर फ्रंट के प्रमुख घाटों पर एक साथ स्वच्छता और जन जागरूकता गतिविधियां संचालित की जाएंगी। इस अभियान में लगभग 500 सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक और स्वयंसेवी संगठनों के साथ हजारों स्वयंसेवकों की भी भागीदारी होने की संभावना है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सभी नागरिकों, सामाजिक संगठनों, युवाओं और स्वयंसेवकों से इस अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जन सहभागिता से ही स्वच्छ, निर्मल और जीवनदायिनी यमुना का सपना साकार किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले वर्ष भी यमुना व उसके घाटों को स्वच्छ बनाने के लिए मेरी यमुना मेरा कर्तव्य अभियान चलाया गया था। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष कार्यक्रम में हजारों स्वयंसेवकों ने भाग लिया था और 12 टन से अधिक अपशिष्ट वेस्ट एकत्र कर उसका वैज्ञानिक निस्तारण किया गया था। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि इस वर्ष का अभियान और अधिक व्यापक स्वरूप में आयोजित किया जा रहा है। इसके लिए स्थानीय प्रशासन, पुलिस, दिल्ली नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग और अन्य संबंधित एजेंसियों के सहयोग से सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, पीने के पानी, प्राथमिक चिकित्सा, आपातकालीन सेवाओं और स्वच्छता संबंधी सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से नीतिका गुप्ता।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता अधिवक्ता पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सम्मान मेजर बराक की उत्कृष्ट सेवा और संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में भारत के लंबे योगदान को मान्यता देता है। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धि देश की अनेक युवा बेटियों और युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापना के प्रयासों में मेजर बराक की उत्कृष्ट कार्यकुशलता और अनुकरणीय नेतृत्व ने वैश्विक पटल पर देश का सर गर्व से ऊंचा उठा दिया है। उन्होंने कहा कि ये ऐतिहासिक सफलता देश के युवाओं को प्रेरित करेगी। मेजर अभिलाषा बराक वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में इंगेजमेंट टीम कमांडर और लैंगिक मामलों की प्रमुख अधिकारी के रूप में कार्य कर रही हैं। सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत में एलपीजी सिलेंडर का मूल्य अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
पश्चिम एशिया में हाल के संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए सरकार ने कहा है कि भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल रहा जिसने समुद्री यातायात में गंभीर बाधाओं के बावजूद होर्मुज जलडमरू मध्य के रास्ते ऊर्जा आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखा। सरकार के अनुसार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं हुई और एलपीजी की वितरण व्यवस्था भी सामान्य रूप से चलती रही। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी को 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर पर विशेष राहत मिल रही है। योजना के अंतर्गत लाभार्थी पहले 4 रिफिल पर प्रतिवर्ष 300 रुपए की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी सहायता प्राप्त करते हैं। इसके बाद उन्हें एक सिलेंडर के लिए प्रभावी रूप से 642 रुपए का भुगतान करना पड़ता है, जबकि दिल्ली में सामान्य उपभोक्ताओं के लिए इसी सिलेंडर की खुदरा कीमत 942 रुपए है। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
इस बीच आज घरेलू रसोई गैस की कीमत में 29 रुपए की वृद्धि की गई। दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर की नई कीमत 942 रुपए है। दिल्ली के जल और सिंचाई मंत्री परवेश साहिब सिंह ने आज वरुणालय में क्षेत्रीय राजस्व अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री सिंह ने अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान पूर्ण पारदर्शिता, ईमानदारी और जवाबदेही के साथ काम करने पर बल दिया। इस बैठक में सभी अधिकारियों को निवासियों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ने, उनकी चिंताओं को समझने और निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि अधिकारी ये सुनिश्चित करें कि प्रत्येक नागरिक को सरकार द्वारा प्रदान की जा रही सभी कल्याणकारी योजनाओं और लाभों के बारे में जानकारी हो। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आज जनकपुरी में साइकिलिंग अभियान पैडल द बीट संडे ऑन साइकिल आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। इस रैली में बच्चे, युवा, महिलाएं, वरिष्ठ नागरिक और फिटनेस प्रेमी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। इस अभियान का आयोजन जनकपुरी में किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि समाज के प्रत्येक वर्ग को इससे जुड़ना चाहिए। उन्होंने नागरिकों से नियमित रूप से खेल और फिटनेस गतिविधियों में भाग लेने का आह्वान किया।
संडेज ऑन साइकिल भारत सरकार का एक इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है। खेलों और फिटनेस के इकोसिस्टम को प्रमोट करने की भारत सरकार की, नरेंद्र मोदी जी की सरकार की पहल है और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में इस पहल को दिल्ली की गलियों तक ले जाना फिटनेस के इकोसिस्टम को बढ़ाने का एक प्रयास।
दिल्ली पुलिस ने आज करावल नगर में एक गैर सरकारी संगठन के साथ मिलकर संडे रेस कार्यक्रम का आयोजन किया। भागता भारत नाम का यह संगठन राष्ट्रीय स्तर के धावक बनने की आकांक्षा रखने वाले पेशेवर धावकों के लिए नियमित प्रशिक्षण सत्र आयोजित करता है। कार्यक्रम के दौरान पुलिस उपायुक्त संदीप लांबा ने संवाददाताओं को बताया कि प्रत्येक रविवार को अलग अलग स्थानों पर यह कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने कल IDFC फर्स्ट बैंक और AU फाइनेंस धोखाधड़ी मामले की जांच के सिलसिले में चंडीगढ़, पंचकुला और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 6 परिसरों पर छापेमारी की। ये मामला हरियाणा सरकार के 8 विभागों और चंडीगढ़ नगर निगम तथा चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी क्रेस्ट के 2 विभागों में 661 करोड़ रुपए के गबन और सरकारी धन की हेराफेरी से संबंधित है। दिल्ली पुलिस ने आज रोहिणी से एक अवैध शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया है कि आरोपी के पास से अवैध शराब और तस्करी में इस्तेमाल की गई एक गाड़ी जब्त की गई। मामले की जांच की जा रही है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पोर्टल मध्य रात्रि तक खुला रहेगा। बोर्ड ने छात्रों से अनुरोध किया है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपने आवेदन भरकर जमा कर दें। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी पुनर्परीक्षा के प्रश्न पत्र के कथित रूप से लीक, अग्रिम पहुंच या बिक्री से संबंधित अफवाहों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा है कि ये विद्यार्थियों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता पूरी तरह बनी हुई है। उम्मीदवारों के लिए निष्पक्ष और सुरक्षित परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय किए गए हैं। दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के सी ब्लॉक में 4 मंजिला इमारत में आज दोपहर आग लग गई। 3:40 पर घटना की सूचना मिलते ही दिल्ली अग्निशमन विभाग की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची और 4:05 पर आग पर काबू पा लिया गया। इस मामले में स्टेशन ऑफिसर राजकुमार ने बताया कि टीम ने तुरंत सीढ़ियां लगाई, बचाव अभियान शुरू किया और आग बुझाने का काम शुरू किया। उन्होंने बताया कि कुल 8 लोगों को सफलतापूर्वक बचाया गया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉ जेपीएस डबास के साथ खेत बचाओ अभियान, उर्वरकों के समिति उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। इस वर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का विषय है समस्या से समाधान तक, हर जगह सुरक्षित भोजन। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राजधानी सभी के लिए सुरक्षित, स्वच्छ और पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दोहराती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भारतीय महिला फुटबॉल टीम को सैफ चैंपियनशिप 2026 जीतने पर बधाई दी है। भारत ने कल गोवा के मडगांव में खेले गए फाइनल में मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम किया। राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में आज शाम बारिश हुई, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से काफी राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 41.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पीएम ई ड्राइव योजना के तहत दिल्ली में 2800 इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली परिवहन निगम के बेड़े में शामिल होंगी। दिल्ली सरकार 14 जून को यमुना तट स्वच्छता अभियान का आयोजन करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता अधिवक्ता पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 12वीं कक्षा के पुनर्मूल्यांकन आवेदन का आज आखिरी दिन, मध्य रात्रि में बंद हो जाएगा पोर्टल। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।